अगला हिस्सा इससे भी सेंसिटिव है, आयत 105 से 115 तक, पांचवा हिस्सा है सूरत निसा का। क्या टॉपिक है पढ़े? नज़ूले कुरान की हिकमतें। क्यों नाजिल किया अल्लाह ने ये कुरान, कैसे किया, इसका तरीका कार क्या है? नंबर एक, नज़ूले कुरान का मकसद ये बताया गया कि बिमा अराक अल्लाह, यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करना है। पहला मकसद ये था आयत 105 में, मतलब ये था कि ये कुरान थोड़ा थोड़ा जो नाजिल हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्लाह अपने नबी को दिखाता था, वो हालात वो सिचुएशन क्रिएट करता था, फिर उसके मुताबिक आयतें नाजिल हो जाती थी। फिर दूसरी बात, रातों को छुप छुप कर मशवरे करने वाले मुनाफिकीन पर गिरफ्त की गई, आयत 108 में जिक्र है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्स की खयानत करने वालों की हिमायत से रोक दिया गया। खुद गुनाह करके दूसरों पर इल्ज़ाम थोपने वालों को बड़ा गुनाहगार ठहराया गया, आयत 112। गुनाह हो जाने के बाद मुआफ़ी मांगने वालों को बशारत दी गई कि अल्लाह गफूर रहीम है। बात समझ है? ये कौन थे जो बातें रातों को बैठ के करते थे, सामने आ नहीं सकते थे, खुल के मैदान जंग में निकलते नहीं थे, तो घर बैठ के ना तनकीद बड़ी करते थे, निफाक की बातें, और नौज़ बिल्ला नबी सल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते थे। अल्लाह कहता है इनको रोक लो। फिर जो मुनाफिकीन अपनी खुफिया मजालिस में, खुफिया मजलिस को क्या कहा है इधर, नजवा किया करते थे, इस पर सख्त गिरफ्त की गई। नजवा क्या है? खैर के कामों और अल्लाह की खुशनुदी यानी मर्दात अल्लाह के हसूल के लिए जायज़ है, आयत 114। बड़ी प्यारी आयत है कि नजवा तो कान में बात करता है, इज्तमाई की बात, इज्तमाई मसले का दो लोगों में डिस्कस करना, मीटिंग में बोले ही कोई नहीं, बाद में दो लोग बैठ के सर जोड़ के उस पर तनकीद और तारीफ कर रहे हैं, ये नजवा है। याद रखिए, जो बात मीटिंग में करनी है वो अकेले में नहीं करनी, और जो बात हो गई उसके ऊपर दो ने राय जानी नहीं करनी, इससे बहुत दूरियां पैदा हो जाती हैं। फिर इसी तरह देखिए, मुनाफिकीन को मुखलिस सहाबा का रास्ता यानी सबीलुल मोमिनीन इख्तियार करने की हिदायत की गई, वरना ये मुनाफिकीन दोजख में दाखिल किए जाएंगे, आयत 115 से ये चीज़ आपको पता चलती है। तो फिर पांचवा हिस्सा क्या समझ आया? नज़ूले कुरान की हिकमतें। छठा हिस्सा आयत 116 यानी 116 से 134 है, इसमें क्या है आप बोलिए सब मिलके। बनी इसराइल कौन थे? यहूद। और बनी इस्माइल कौन थे? मुसलमान। इन दोनों से मुजादला। मुजादला क्या होता है? मुजादला बेसिकली इंग्लिश में आप कहेंगे ना तो जैसे डिस्कशन, दलाइल के साथ एक दूसरे को पेश करना, डायलॉग से ऊपर भड़ के, जैसे डिस्कशन या एक इससे भी ऊपर दर्जा होता है ना, जिसमें दोनों फरीक अपनी राय देते हैं, तबादला तो ख्याल कह लीजिए। नंबर एक, औलादे इब्राहिम। औलादे इब्राहिम की दोनों शाहों को इस्लाम की दावत दी गई, तौहीद की अहमियत बयान करते हुए बताया गया कि शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ किया जा सकता है। बनी इस्माइल फरिश्तों को उनास यानी अल्लाह की बेटियां बनाकर पुकारते थे, इन्हें इब्लीस के दाम में गिरफ्तार ना होने की हिदायत की गई। इब्लीस बिदात का हुक्म देता है, जिनके मुर्तकिब कुरैश और बनी इस्माइल हैं, आयत 119, ये दोस्ती होंगे। बनी इसराइल और बनी इस्माइल दोनों के लिए अहम असूल बताए गए और इन्हें दीन इब्राहिमी की पैरवी का हुक्म दिया गया। जन्नत में दाखिला ना तो बनी इसराइल के अहले किताब की खुश फहमियों पर मौकूफ़ है और ना बनी इस्माइल और कुरैश की खुश फहमियों पर। लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब, बल्कि नसब से क़तअ नज़र जो भी सही अकीदा और अमल इख्तियार करेगा वह जन्नत का मुस्तहिक होगा, आयत 123। आज मुसलमानों की भी ख्वाहिशें हैं कोई? हम ही जन्नत में जाएंगे बस। तौहीद पर साबित कदमी इख्तियार करने की वजह से हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त खलील बना लिया, इसलिए बनी इसराइल और बनी इस्माइल दोनों को अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। यतीमों से मुतल्लिक माशरती अहकाम अदल का एयादा, एयादा क्या होता है? दोहराना, दोहराई की गई, रिपीटिशन हुई, रिवाइज कराया गया, और एक से ज़्यादा बीवियों की सूरत में बीवियों में अदल का हुक्म दिया गया, 129 में। बनी इसराइल और बनी इस्माइल दोनों को हुक्मे तकवा दिया गया और इस्तबदाले कौम की धमकी दी गई। इस्तबदाले कौम क्या होता है? कौम बदल दी जाएगी, यानी तुम्हें निकाल कर दूसरों को ले आऊंगा। ई यशा युजहिब कुम अय्युहन्ना सुवयाति भी आखरीन, आयत 133। अगर ये नंबरों के साथ आपको अपनी पसंद का कोई इशू या जिस पे अमूमन आपसे कोई मसला पूछता है या आपकी दोस्तें बात करती है, तो आप उनके नंबर्स को अलग से अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। जब मौका मिले तो उन आयतों का रेफरेंस आप दे सकते हैं। एक अहम असूल बताया गया कि अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है। फ़इंदल्लाहि सवाबु दुनिया वल आखिरा, जो कौमें सिर्फ दुनिया की तालिब होती हैं इन्हें दुनिया दे दी जाती है लेकिन वो आखिरत से महरूम रहती हैं। तो इस सारे हिस्से में क्या पता चला? दो कौमों का तकाबुल। इसके बाद सातवां हिस्सा, टोटल कितने? सातवां हिस्सा क्या, मिलके पढ़िए आयत 135 से 152। क्या टॉपिक है? तो इससे क्या मुराद है कि मुनाफकत के होते हुए इस्लाम का निजामे अदल कायम नहीं हो सकता। हवाए नफ्स क्या होती है? हवा, ख्वाहिशात। हवाए नफ्स से बचकर मुसलमानों को अदले इज्तमाई कायम करने का हुक्म दिया गया। गवाही अल्लाह के लिए होनी चाहिए, चाहे खुद अपने और अपने वालदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी जो नफ्स की ख्वाहिश है ना, ये बंदे को बहुत रुसवा करती है। कून कवामीन बिलकिस्ति शुहदा अलिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक्रबीन। कच्चे मुसलमानों से सच्चे ईमान का मुतालबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्ला, आयत 136। आप ये आयत का नंबर लिख सकते हैं जिसमें ये सवाल आ सकता है आपको कि कुरान पाक की किस आयत में ईमान वालों को फिर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। तो क्या जवाब होगा उसका? यही जवाब होगा। फिर आगे देखिए, मुनाफिकीन को गैर मुस्लिमों से कतअ ताल्लुक कर लेने का हुक्म दिया गया। मुसलमानों को मुनाफिकीन की मजलिस से इस्तेहजा से उठ जाने की हिदायत दी गई। फला तक़ुदू माहुम हत्ता यहूदू फी हदीसिन गैरी ही, आयत 140। हमारे ऐसे मौक़ों पे क्या अमल होता है? चस्के लेने के लिए बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। कई लोग बैठ के सुनते ही रहते हैं, वो कहते हैं इट्स ओके, जो भी है, हम कौन सा शरीक हो रहे हैं, हम कौन सा उसके अंदर शामिल है। तो याद रखिए कि जिस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल की बातों का इनकार किया जाएगा या मजाक किया जाएगा, इस्तेहजा किया जाएगा, वो महफिलें इस काबिल नहीं होती कि बंदा बैठे। याद रखिए कि ईमान वाले का एक अपना ही मिजाज होता है, आपको सूट नहीं करता। मतलब बास लोग कहते हैं ना, हमें इतवार बाजार से चीजें लेना सूट नहीं करता, कहते हैं ना लोग, हम छोटी सी दुकान से कपड़े खरीदे हमें सूट नहीं करता। इसी तरह याद रखिए, ये छोटी बातें होती हैं, चीप बातें होती हैं, वल्गर टॉकिंग, और ये सारी चीजें जो है ये इंसान के लिए एक किस्म के वबाल का जरिया बनती हैं। तो अपने लिए एक क्राइटेरियन रखें, अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि बेटा अच्छे बच्चे ये बात नहीं करते, ये नहीं बोलते, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा है, आपको ये बात नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह छोटी छोटी बातों को नोट करते जाएं, आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि आपका खुद एक इमेज बन चुका होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इसी का नाम है, सेल्फ इमेज अपना अच्छा कर लीजिए, दूसरों के लिए भी आप अच्छे होंगे। और बास खानदानों में बच्चे भी बैठे हुए हैं, बड़े भी बैठे हैं, कभी उसकी बुराई कभी उसकी बातें, तो ये महफिलें लगाना ये चीजें इंसान के अंदर निफाक ले आती हैं। फिर इसी तरह आयत 141 से 147 में कहा गया, अल्लाह ताला मुनाफिकीन और काफिरीन को जहन्नुम में जमा करेगा। मुनाफिकीन की सिफात बयान की गई। फिर तरबुस, तरबुस किसको कहते हैं? इद्दत के लिए भी लफ्ज तरबुस आया, ऐसा इंतजार जिसके बाद इंसान को खुशी मिले, जिसके बाद कोई रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद हो। तो तरबुस यानी इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी पर अमल करते हैं कौन? मुनाफिक। युखादिउन अल्लाह यानी अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तीसरी सिफत क्या जी मुनाफिकीन की? ये लिस्ट बना सकते हैं आप अलग से भी, अपने पास लिख लें। एक निफाक की लिस्ट बनी है सूरत बकरा में, याद है? वमिनन नासी मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाही वबिल यौमिल आखिर, याद है आपको? वहां लंबी लिस्ट थी ना, युखादिउन यकजिबून ला यशुरून, यहां उसी में कुछ ऐड हो रहा है। पहली क्या है? तरबुस, जिसको उर्दू में कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो। देखते हैं, इस्लाम के इस हुक्म पे अमल करने से अच्छा फायदा होगा तो कर लेंगे। और इसी को सूरत हदीद में फिर बहुत डांट के अंदाज में भेजा गया है कि तुम तो सारी जिंदगी तरबुस में रहे, बैठे रहो आराम से। फिर युहादेउन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश। फिर कामु कुसाला, नमाज के लिए कसल मंदी यानी सुस्ती से काम लेते हैं। युराउन अन्नास, रियाकारी करते हैं। वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नमाज में अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। मुजबजबीना यानी दो रुखे होते हैं, शक का शिकार है, पुख्ता ईमान की बजाय तजब्जुब का शिकार होते हैं। कच्चे मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं। ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, आयत 144। मुनाफिकीन के लिए दोजख में अद्दरकुल असफल, सबसे निचला हिस्सा होगा, आयत 146। सबसे ज्यादा डर इसको बढ़ के आता है। हमारे जहन में अमूमन क्या आता है कि सबसे ज्यादा अजाब काफिरों को होगा। नहीं, काफिर तो बस एक कह के इनकार करके अलग हो गए ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि हम कुछ करेंगे। जिन्होंने कहा था हम कुछ करेंगे और फिर ना किया, उनके ऊपर ज्यादा पकड़ आती है उन लोगों की निस्बत जिन्होंने ये बात कही नहीं थी। फिर इसके बाद आप देखिए कि मजलूमों के अलावा किसी दूसरे शख्स के बारे में बुरी बात जहरी बिस्सू जुबान से निकालने की इजाजत नहीं। कहाँ है ये आयत? 148, छठे पारे की पहली आयत। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू मिनल कौली इल्ला मन जुलिम। क्या पता चला कि किसी की बुराई बयान करना पसंदीदा नहीं, लेकिन उस बंदे को इजाजत है जिस पे जुल्म हुआ। कई लोग सवाल करते हैं, अच्छा फिर हमारा तो मसला भी जायज है, फिर हम किसी आलिम दीन से भी ना बात करें, अच्छा फिर हम अपने शोहर की बात, अपनी बहू की, सास की ना करें। तो ये आयत आपके सामने है, चस्केबाजी नहीं है, स्कैंडल्स बनाना नहीं है, लेकिन आप अपना मसला किसी अदालत में पेश करें तो वहां तो आपको हकीकत हाल खोलनी पड़ेगी। और ट्रैश हैं गंदी बातें, इनको लपेट के कहीं भी छोड़ दे इंसान। फिर मुनाफिकीन को मनफी प्रोपेगंडे से रोक दिया गया, और जुजवी ईमान यानी नोमिनु भी बात व नकफुरु भी बात पर अजाब की धमकी दी गई, और अल्लाह और रसूल पर सच्चे ईमान की सूरत में जन्नत की बिशारत, आयत 152 में। आपने एक चीज नोट की, पहले पारे से ही आप देख रहे हैं, पहले पारे में क्या था? अफतु में नूना बिबादिल किताबी बतकफुरूना बिबाद, याद आ रहा है? तुम किताब के कुछ हिस्से पे अमल करते हो, कुछ पे नहीं करते। फिर आप तीसरे पारे में गज़वे उहद के तनाजर में, बल्कि चौथे पारे में भी, यहां भी देखिए, आपको वो जुमला आज भी याद होगा कि आधा अमल निफाक है। नोमिनु बिबात व नकफुरु बिबात, एक जुमला लिख लें, दीन में अपनी मर्जियां करने की इजाजत नहीं है। मुझे सारा ही मानना पड़ेगा क्योंकि मैं सरेंडर्ड हूं, मैं अल्लाह के आगे झुका हुआ हूं, वरना अजाब की धमकी है, अल्लाह हमें बचा के रखे। फिर इसके बाद जी आखिरी यानी आखिरी से पहला आठवां हिस्सा सूरत निसा का क्या था? 153 से 175। बोलिए इसका टॉपिक। यानी ओवरऑल अहले किताब, लेकिन बिलखसूस ईसाइयों से मुजादला। बनी इसराइल के जुराम बयान करके इनके खिलाफ फर्द जुर्मायत की गई, उनके खैर और शर की वजाहत की गई। ईसाइयों को साफ बता दिया गया कि हजरत ईसा कत्ल नहीं किए गए। अब लिख लें यह आयत रेफरेंस में अपने पास। कोई कहता साबित करो कुरान से कि हजरत ईसा कत्ल नहीं किए गए, तो आयत 157 है, वमा कतलूहू वमा सलबूहू वलाकिन शुब्बिहा लहू, ना कत्ल हुए ना सूली पे चढ़े, बस उनके बारे में शिबा डल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब उतारने के मुतालबे पर तबसरा किया गया कि इस तरह हजरत मूसा को भी अजियत पहुंचाई गई थी। यहूदियों के जरायम गिनवाए गए, अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा, बछड़े को खुदा बना लेना, सब के अहकाम की नाफरमानी, नक्ज़े मीसाक का मुर्तकिब होना, ये क्या होता है? वादे तोड़ना, अहद तोड़ना, अंबिया का कत्ल वगैरह, आयत 155 में ये सब कुछ है। हजरत मरियम पर बुहतान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या लफ्ज लिखा हुआ? इनकार, आयत 156 में। सूदखोरी में मुबतला होना, आयत 161 में। अब देखिए ये किन के जरायम की लिस्ट है? यहूद की। आज मुसलमानों में इसमें है कुछ? अब आप ये आयत का नंबर लिख लें। कुरान की वो कौन सी आयत है जिससे पता चलता है कि यहूद पर भी सूद हराम है? तो ये आयत 161 है। کیونکہ وہاں بھی لفظ حرام آتا ہے. قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے. آیت 159. معقول یعنی عقل رکھنے والے اہل کتاب الراسخون کو دعوت اسلام دی گئی اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پچھلے انبیاء کی طرح ہے. وحی کا مقصد اتمام حجت ہے، یعنی ان پہ حجت تمام ہو جائے. لِاللہ یکونا، تاکہ نہ ہو للناس لوگوں کے لیے، اللہ ہی حجت، اللہ کے خلاف حجت، یعنی اللہ کو حجت نہ دے دیں یہ کہ ہمیں پکڑ لے. آیت 165. تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. آیت 170، یہ لکھ لیں آیت. ساری دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی گئی. پھر اس کے بعد اہل کتاب کو غلوب، کیا بولتے ہیں اس کو؟ غلو تو نہیں بولتے، غلوب، غلوب، ایگزیجوریشن، اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا. لا تغلو فی دینکم، آیت 171. عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینیٹی چھوڑنے کی ہدایت کی گئی. ولا تقولوا ثلاثۃ، آیت 171. حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی. آج لوگ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کو؟ سن آف گاڈ. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ اپنے آپ کو کیا کہلاتے تھے؟ سلیو آف گاڈ. تو کتنی بڑی دلیل ہے، آیت 172 لکھ لیں. سوال بنا سکتے ہیں آپ اس پہ کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خود کو سن آف گاڈ نہیں سلیو آف گاڈ کہتے تھے؟ تو وہ یہ آیت ہے. عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا، یعنی دہرایا گیا. برہان اور نور آ جانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آیت 174. آخر میں ایمان لا کر اس کی پیروی کرنے والوں کو رحمت اور صراط مستقیم کی بشارت دی گئی. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم پہلے ہی اس دعوت کے اندر آتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ذرا خود کو جھنجھوڑے، نہ ہوتا ہمارے پاس اسلام نام کا بھی، تو کیا ہم نے خود کو غلط کہہ رہے ہونا تھا؟ ہم نے کہنا تھا ٹھیک ہے، جس میں اللہ نے پیدا کیا وہی ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرا. پھر نواں پیراگراف آخری آیت 176، ایک آیت پر، اور وہ ہے کلالہ. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ باپ نہ بیٹا، یعنی ایسی عورت یا ایسا مرد جس کے پیچھے نہ تو بیٹا ہو، اولاد ہو، اور نہ باپ یعنی دادا، نہ اوپر سے کوئی ہے نہ نیچے سے. ہماری زبان میں پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ابتر نختر. جی وہی بات، یعنی جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، یعنی کٹا ہوا وہ شخص بس اکیلا ہے. جس میں کلالہ کے احکام بیان کر کے قانون وراثت کی ایک ذیلی شک سب ٹاپک کلالہ کی وضاحت کی گئی. یہ دراصل پہلے پیراگراف کی آیات 12-14 کا ضمیمہ ہے. کلالہ سے مراد ایسی میت ہے جو نہ تو اوپر ماں باپ چھوڑ کر مرے اور نہ ہی نیچے یعنی بیٹا اور بیٹی چھوڑے، یعنی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا، اور ایک سے زائد بہنوں کی صورت میں دو تہائی. بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا. کون ہمیں یہ قوانین سکھاتا اگر ہم قرآن نہ پڑھتے؟ تو یہ تھے 9 حصے. آخری چیز مرکزی مضمون، بالکل سینٹرل پوائنٹ، فوکل پوائنٹ آف دی سورہ. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ساری دنیا کو بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام دیں. مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست یعنی اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے. دعا تو کر سکتے ہم، آپ سوچئے کہ یہ ہو جائے کیا بنے. آسمان سے بھی رزق برسے گا اور زمین سے بھی. جس گھر میں اجتماعیت ہو، شکوے جھگڑے لڑائیاں نہ ہو، وہ گھر بھی جنت ہے. اور جس ملک میں ایسا ہو جائے وہ کیسا ملک ہے؟ آپ کہتے ہیں دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں کہ آپ اپنے حکمرانوں کی برائی نہیں کر سکتے، آپ اپنی بری خبر نہیں شائع کر سکتے. یہ جن ملکوں کا بہت نام آتا ہے کہ یہاں بہت سکون ہے، خاموشی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بری خبریں نہیں دیتے. हम तो उछालते हैं, खुद देखो। पहले तो कम उछालते थे, अब शो बिजनेस वालों ने और ही उछाल के रख दिया। ऐसे लगता है पाकिस्तान में मेंढकों वाला पानी लोग पीते हैं और जूस में से केंचुए निकलते हैं, और ये वीडियोस बना बना के लोगों ने और ही बदनाम कर दिया अपने मुल्कों को। नहीं समझ रहे आप, पहले भी ये सब कुछ था। अगर निकला है तो उसको वीडियो बना के बैठोगे, उसको निकाल के फेंकोगे उस वक्त। जीना तो उबर कर दिया आज, ऐसे लगता है वहां जाके सांस भी लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कौन जाएगा फिर पाकिस्तान, कौन जाके वहां के खाएगा खाने और पिएगा? कोई है, हर जगह होगा। उसको खत्म करके इस्लाह कर दे, उनको अल्लाह का खौफ दे। अब मीडिया ने ये काम कर दिया कि गंदगी का ढक्कन खोल के दिखा रहे हैं ये ट्रैश कैन है। अब आप अपने घर की ट्रैश कैन को खोलें, पूरे घर में लेके फिरें, तो खुशबू आएगी घर में। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें एक मजबूत मुल्क बना दे। छोटी सी वजाहत एंड पे, खानदान मुआशरे की बुनियादी इकाई होता है और इज्तमाईयत की आला तरीन शक्ल रियासत है। खानदान की मजबूती का दारोमदार मियाँ बीवी औलाद और माँ बाप के अलावा रिश्तेदारों और यतीमों के हकूक के तहफ्फुज़ पर होता है, जबकि रियासत का इस्तेहकाम खारजी महाज के अलावा दाखिली महाज पर इत्तेहाद और यकजहती पर मुनहसर है। मुनाफिकीन रियासत को खोखला करते हैं। इस्लामी इज्तमाईयत के फ़राइज़ महले किताब को इस्लाम की दावतों तबलीग भी शामिल है। तो ये आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को इस्लाम की दावत दें। तो ये थी सूरत अन्निसा। एक चीज़ आपने नोट की है, शायद नहीं की। अच्छा जी, एक बात तो बताइए, सूरत का नाम और सूरत का टॉपिक या उसकी डिटेल्स में क्या रब्त है? सूरत निसा से क्या लगता है, औरतें कैसी होती हैं, औरतें कैसे कपड़े पहनती हैं, औरतों को क्या चीज़ अच्छी लगती है, औरतों को कैसे खुश करें? एक औरत थी और उन्होंने किसी दीन सिखाने वाले से आके झगड़ा किया कि इस्लाम जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है। 114 सूरतों में से सिर्फ एक सूरत औरतों के बारे में, उनका ख्याल था सिर्फ कुरान में सूरत निसा में ही औरतों की बात है और 113 सूरतों में उसके खिलाफ बातें। और अगर वो आज ये सारा सेशन सुन ले, वो कहेगी वो भी नहीं है अंदर। यहाँ से आप औरत का किरदार देखें, एक उम्मत बनाने में, एक मुआशरा बनाने में औरत का पुरसकून होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि औरत की गोद में नस्लें पलती हैं। जिस सोसाइटी ने औरत को बेसकून कर दिया, वहाँ कभी इस्लाम नहीं आएगा, वहाँ कभी अमन और चैन नहीं आएगा। तो आपको मुझे अपने औरत होने को पहचानना है, और इसमें औरतों का किरदार भी है। उम्मत और उम्मा, हमारी एक मशाला जगह पे क्लास में 2015 वाला कुरान जिसका टॉपिक क्या था, उम्मते वसत के नाम, अटलांटा से हुआ था। तो कल पाकिस्तान में एक जगह वो दौरे कुरान शुरू हुआ है, तो उसका इंट्रो सुना उन्होंने। तो मैंने बाद में डिस्कशन में सिस्टर से पूछा कि आपने आज क्या सीखा, तो उनमें से बहुत अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन है, कहने लगी कि आज मैंने जिंदगी में पहली दफा ये बात सुनी है कि लफ्ज़ माँ और उम्मत नस्ल दोनों का रूट एक ही है, कि माँ की इसलाह कर लो उम्मत की हो जाएगी। मैंने कहा अभी तो आपने पूरे पारे में ये कुछ सुनना है, तो आज उम्मत की इसलाह के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? और औरत अनपढ़ है तो नस्लें कैसी होंगी? माँ नहीं कुरान जानती, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, बच्चों को पढ़वाने के लिए माएँ आती हैं, खुद बैठ के फ़ोन से खेलती रहती हैं। ज़रूरत उनको भी है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा तभी वो सुनेंगे। बिल्कुल, देखिए मुनाफ़कत के भी कई दर्जे हैं। मुनाफ़कत और कमज़ोर ईमान में फ़र्क है। बस अपने ईमान की फ़िक्र करें, दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दें। मुझे इतना पता है कि अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करेगा। जिसको जितनी बड़ी नेमत दी है ना, उससे उतना बड़ा सवाल होगा, और किसी का हिसाब कम होगा, हमारा बड़ा सख्त होगा, क्योंकि हमें पता चल गया। शायद अल्लाह बहुत सारे लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे के बचा दे। और एक और बात भी याद रखे, जो आपका सवाल है उसकी मैं गहराई समझ रही हूँ, कि दुनिया में जिनमें वाकई मुनाफ़क़त है तो फिर अल्लाह उनको दुनिया में पाक करेगा। बीमारियों, दुखों, तकलीफ़ों, औलादों के गम, पता नहीं क्या कुछ, उनकी ज़िंदगी अजीरन है। दुनिया में अल्लाह उनको ऐसी उलझनों में डालेगा, इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है फिर अल्लाह आखरत में पाक कर देगा। ठीक है, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।